लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे समस्त युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मरियम के जीवन से आदर्श ग्रहण कर सुनने की क्षमता, समझ की गहराई, विश्वास उत्पन्न करने वाला साहस और सेवा के प्रति समर्पण का वरण कर पूर्णता का जीवन जिएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है।
प्रभु का मार्ग धर्मी का गढ़ है, किंतु वह कुकर्मियों का विनाश करता है। धर्मी कभी विचलित नहीं होगा, किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं करेंगे। धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी की जिह्वा काट दी जाएगी। धर्मी के होंठ प्रिय बातें करते हैं, किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती हैं। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 10वें अध्याय के 29 से लेकर 32 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि प्रभु का मार्ग धन्य है तथा उन लोगों के लिए आशीर्वाद का स्रोत है जो उस पर सुदृढ़ रहते हैं। इसके विपरीत कुकर्मियों का विनाश होगा और वे किसी चीज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। धर्मी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, जबकि विधर्मी देश में निवास नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य यही कि धर्म परायण व्यक्तियों को एक शानदार भविष्य मिलेगा। वे सदैव सुरक्षित और अचल रहेंगे, जबकि विधर्मी अपने ही देश में नहीं टिक पाएंगे। सूक्ति ग्रंथ के उपदेशक ने यहाँ इस बात पर बल देना चाहा है कि अखंडता पर शक्ति और स्थिरता निहित रहा करती है तथा प्रभु का मार्ग धर्मी की सच्चाई में उसकी पुष्टि करता है। श्रोताओ, प्रभु के रास्ते के जितने हम करीब आते हैं, उतना ही उस पर आगे बढ़ने के लिए हमारा दिल उदार हो उठता है। हम अन्यों की सेवा और दुख कष्टों के मर्म को समझने लगते हैं और एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। प्रज्ञा और विवेक व्यक्ति विशेष को पाप से शुद्ध रखते और जोखिम के क्षणों में उसे साहस प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कर्तव्य में निरंतर परिश्रम करते रहने से मनुष्य के काम आसान बन जाते हैं। अस्तु श्रोताओ, प्रभु का मार्ग धर्मी का गढ़ है का अर्थ यही कि धर्मी कभी भी हटाया नहीं जाएगा। जिसके पास एक स्थापित गुण है, उसके पास एक स्थापित शांति है, खुशी है, जो उससे कभी छीनी नहीं जा सकती। प्रभु का मार्ग उसके लिए एक चिर स्थायी नींव है, जिस पर सुदृढ़ रहकर वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। फिर 10वें अध्याय के 31वें और 32वें पदों में उपदेशक धर्मी और विधर्मी में अंतर दर्शाते हुए इस बात को रेखांकित करता है कि ईश नियमों पर चलने वाले धर्मी स्त्री पुरुष अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातों से प्राय मानवीय हृदय की उदारता प्रस्फुटित होती है, जबकि दुष्ट के मुख से सदैव अन्यों के लिए अपशब्द निकलते हैं। वह अपनी कुटिल और कपटी बातों के लिए कुख्यात रहता है। इसीलिए 31वें पद में उपदेशक कहता है कि कपटी की जिह्वा काट दी जाएगी, यानी कि उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। उपदेशक यह स्पष्ट करना चाहता है कि धर्मी स्त्री पुरुषों के बुद्धिमान और पवित्र प्रवचन बहुतों के उत्थान का कारण बनते हैं। वे जानते हैं क्या स्वीकार्य है और कौन सा प्रवचन ईश्वर को सुग्राह्य होगा। इसके विपरीत दुष्ट और कपटी व्यक्तियों के मुख से विकृत और छल पूर्ण बातें निकलती हैं। हालांकि दुष्ट यह जानता है कि क्या गलत है, फिर भी वह दुष्ट वचन बोलने से नहीं चूकता, क्योंकि उसके मन में ईश्वरीय प्रेम का अभाव है और ईश्वर के प्रेम के अभाव में उसके होठों से कृपा के शब्द नहीं निकल पाते।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 31 पदों वाले इस अध्याय के उपदेशक भी बुद्धिमान राजा सुलेमान हैं, जो नहीं चाहते थे कि उनकी संतानें सुमार्ग से भटक जाएं। यहाँ सुलेमान इसी बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि नेक इंसान अपनी अखंडता के कारण बच जाते हैं, किंतु कुटिल और दुष्ट लोग खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि सूक्ति ग्रंथ के नीति वचनों में कई बार एक ही विषय को अलग अलग शब्दों में दोहराया गया है। उपदेश का सार यही कि धर्मी लोगों के सद्गुण उन्हें बचाते हैं, जबकि दुष्ट लोगों के बुरे गुण उन्हें स्वयं के विनाश की ओर ले जाते हैं। 11वें अध्याय के प्रथम 3 पद इस प्रकार हैं: प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, किंतु उसे सही बाट पसंद है। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। धर्मियों की ईमानदारी उनका पथ प्रदर्शन करती है, किंतु विधर्मियों का कपट उनका विनाश करता है। श्रोताओ, ईश्वर के लिए व्यापार में अथवा लेन देन में छल से अधिक घृणास्पद और कुछ नहीं है। उक्त पदों में व्यवहार में सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहारों के एक झूठे संतुलन को दर्शाया गया है, जो प्रभु के लिए घृणित है। इन भ्रामक संतुलनों के तहत ही बेईमान, स्वार्थी और कपटी व्यक्ति खुद को समृद्धि से संपन्न बनाने के लिए शापित कलाओं का उपयोग करते हैं, जो कि ईश्वर के लिए घृणित है। ये ईश्वर के न्याय के विरुद्ध काम करते तथा न्याय का अपमान करते हैं, जिसके संरक्षक स्वयं प्रभु ईश्वर हैं। ईश्वर के विरुद्ध पाप करने के अलावा ये पड़ोसी के विरुद्ध भी गलत काम करते हैं और उनके साथ छलपूर्ण व्यवहार करते हैं। खोटे तराजू का उपयोग कर वे पड़ोसी को धोखा देते और इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि ऐसा कर उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। दुष्ट मूर्ख मानो कहते हैं कि यदि मैंने धन कमाने की तरकीब निकाली है तो यह मेरी ही बुद्धि का कमाल है। वे अपने ही गुमान में अंधे हो जाते हैं। वे इस बुरे कर्म के लिए खुद पर घमंड करने लगते हैं, किंतु सूक्ति ग्रंथ का उपदेशक कहता है कि घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। श्रोताओ, ईश्वर के लिए उचित और ईमानदार व्यवहार से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारा ईमानदार व्यवहार ही ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति को भी स्वीकार्य और सुग्राह्य बनाता है। न्यायपूर्ण वजन में ही प्रभु के आनंद को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर स्वयं एक उचित वजन से चलते हैं और न्याय के पैमाने को एक हाथ से पकड़ते हैं, और इसीलिए उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उनके आदेशों का अनुपालन कर अपना जीवन साकार करते हैं। आगे 11वें अध्याय के 4थे पद में सूक्ति ग्रंथ का उपदेशक कहता है, संपत्ति कोप के दिन किसी काम की नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ धन संपन्नता के लाभों को मान्यता देता है, तथापि इसकी सीमाओं से भी लोगों को अवगत कराता है। सांसारिक धन संपत्ति कोप के दिन अर्थात न्याय के दिन व्यर्थ होती है। बाइबल आचार्य क्लार्क इस सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं, जो इस प्रकार है। किंवदंती है कि इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें के शासनकाल में विंचेस्टर के धर्माध्यक्ष रहे कार्डिनल बोफोर्ट कहते हैं, मैं इतना अमीर हूँ, फिर मैं क्यों मरूं? क्या मौत को काम पर नहीं रखा जा सकता? क्या पैसा कुछ भी नहीं करेगा? क्या दौलत दंड स्थगन नहीं कर सकती? श्रोताओं, तात्पर्य यह कि जिसके पास धन दौलत होती है, वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता और खुद अपने अहित का कारण बनता है। वह इस भ्रम में रहता है कि धन से सब कुछ को खरीदा जा सकता है। वह सांसारिक धन दौलत में इतना रम जाता है कि धन की सीमा को नहीं देख पाता। इसके विपरीत सूक्ति ग्रंथ का उपदेशक कहता है कि सांसारिक धन नहीं अपितु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है, अर्थात हम अपने वर्तमान सांसारिक धन का उपयोग स्वर्ग में खजाना जमा करने के लिए कर सकते हैं, जिसका लाभ हमें न्याय के दिन अवश्य मिलेगा। संत लुकस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 33वें और 34वें पदों के अनुसार प्रभु येसु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छिजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंज जमा करो, वहां न तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 102वें कैथोलिक दिवस मनाने वालों को प्रसिद्ध संदेश में सभी कैथोलिकों का हार्दिक अभिवादन किया है तथा उन्हें शांति हेतु प्रार्थना करने और यह जानने का निमंत्रण दिया है कि केवल एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि सभी लोग समृद्ध एवं अधिक सुंदर बन सकें। कैथोलिक दिवस की शुरुआत बुधवार को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में हुई और यह रविवार तक जारी रहेगा। अपने संदेश में कार्तिक दिवस के आदर्श वाक्य के रूप में संत पापा ने गौर किया है कि ईश्वर ने मानव में अपनी सांस फूंक दी है तथा यीशु में अपना जीवन साझा किया है। यह उनकी पराकाष्ठा है जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर हमारे जीवन को ईश्वरीय जीवन में सहभागी होने के योग्य बनाया है। अतः हम सभी यीशु के उदाहरणों पर चलकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, जैसा कि आज हम यूक्रेन के लोगों एवं हिंसा से भयभीत जनता के निकट हैं। संत पापा ने कहा है कि हम अपने जीवन को ईश्वर एवं पड़ोसियों के लिए कई तरह से अर्पित कर सकते हैं। एक समर्पित माता पिता के रूप में अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए या कलीसिया की सेवा में अपना समय देकर अथवा उदारता के कार्यों में सहभागी होकर। संत पापा ने रेखांकित किया कि कोई भी अकेला नहीं बच सकता, हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। अतः यह अनिवार्य है कि हम इस बारे में जागरूकता विकसित करें कि हम सभी एक ही पिता के बच्चे हैं और आपस में भाई बहन हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। यदि हरेक व्यक्ति देगा जो उसे देना है, तो सबका जीवन समृद्ध एवं खूबसूरत होगा। ईश्वर हमें जो देते हैं उसे हमेशा प्रदान करते हैं, ताकि हम उसे दूसरों के लिए बांटें और दूसरों के लिए उससे फलप्रद बनाएं। संत पापा ने स्टुटगार्ट धर्म प्रांत के संरक्षक संत मार्टिन की याद करते हुए कहा कि वे अनुसरण करने के लिए एक ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना कपड़ा गरीब व्यक्ति के साथ बांटा जो ठंड से परेशान था। उन्होंने उससे न केवल मदद दी बल्कि उसके साथ इज्जत एवं चिंता के साथ व्यवहार किया। संत पापा ने कहा, जो लोग यीशु ख्रिस्त के नाम को धारण करते हैं, वे संत के उदाहरणों पर चलते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच चीजों और संभावनाओं को बांटने के लिए बुलाए जाते हैं। हम सचेत रहें और इसके द्वारा जल्द ही महसूस करेंगे कि कहां हमारी जरूरत है। अंततः संत पापा ने गौर किया कि सबसे गरीब लोग भी दूसरों को कुछ दे सकते हैं और धनी लोगों के पास भी कुछ चीजों की कमी रह सकती है और उन्हें दूसरों के उपहार की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा, कभी कभी हमें उपहार स्वीकार करने में कठिनाई होती है क्योंकि इसके लिए हमें अपने स्वयं की अपूर्णता एवं जरूरतों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम दूसरों से कुछ ग्रहण करने के लिए अपने आप को दीन बना सकें। अंत में संत पापा ने कुंवारी मरियम का उदाहरण प्रस्तुत किया जो ईश्वर के प्रति विनम्र रहीं। उन्होंने कहा कि हमारा भी यही मनोभाव होना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस विश्वभर के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थलों से जुड़कर 31 मई को रोम के संत मरिया मेजर महागिरजा घर में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर उनके लिए जो यूक्रेन और विश्व के अन्य जगहों में युद्ध के कारण पीड़ित हैं। रोजरी माला विनती जिसके साथ मरियम को समर्पित महीना समाप्त हो जाएगा, परम धम पीठ के आधिकारिक चैनलों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस उन लोगों के लिए आशा के चिन्ह स्वरूप रोजरी माला विनती करेंगे जो यूक्रेन और विश्व के विभिन्न हिस्सों में जारी युद्ध से पीड़ित हैं। इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को नवीन सुसमाचार प्रचार को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धम पीठ समिति द्वारा जारी एक बयान में की गई है। कहा गया है कि संत मरिया को समर्पित माह के अंत में संत पापा फ्रांसिस दुनिया को आशा का एक चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जो यूक्रेन में युद्ध के कारण पीड़ित हैं और कई युद्धों के अब भी सक्रिय होने के कारण गंभीर रूप से घायल हैं। 31 मई को संत पापा फ्रांसिस रोम समयानुसार शाम 6 बजे रोम के संत मरिया मेजर महागिरजा घर में शांति की रानी मरियम के सामने प्रार्थना करेंगे। दुनिया के हर क्षेत्र के विश्वासों को आमंत्रित किया गया है कि रोजरी माला विनती द्वारा संत पापा की शांति हेतु प्रार्थना में अपना योगदान दें। मरिया मेजर महागिरजाघर की बाईं ओर स्थापित शांति की रानी की यह प्रतिमा का एक खास इतिहास है। इसकी स्थापना संत पापा बेनेडिक्ट 15वें ने की थी और इसे वैटिकन संग्रहालय के उपनिदेशक ग्विदो गाली के समय में बनाया गया था ताकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत के लिए कुंवारी मरियम से प्रार्थना की जा सके। सिस्टर्स प्रोजेक्ट श्रृंखला के हिस्से के रूप में 3 प्राचीन रेगिस्तानी धर्म माताओं की महान आध्यात्मिक विरासत का पता लगाया गया है जिन्होंने धर्माध्यक्षों सहित कई महिलाओं और पुरुषों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की है। हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं? यह सवाल उन आध्यात्मिक धर्म पिताओं एवं धर्म माताओं से की गई है जो प्राचीन मिस्र के रेगिस्तान में रहते थे ताकि वे उन बातों का सुझाव दे सकें कि मुक्ति पाने के लिए व्यवहारिक जीवन में ठोस रूप से क्या किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में तपस्या का अभ्यास करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, बुराइयों एवं प्रलोभनों से बचने के लिए किन सद्गुणों का अभ्यास किया जाए, संक्षेप में अनंत जीवन पाने के लिए अभी और यहाँ क्या किया जा सकता है। अपने शिष्यों की मदद करने के लिए मिस्र के मठवास के इन धर्म पिताओं एवं धर्म माताओं द्वारा स्वर्गीय पुरातन में व्यक्त किए गए उपदेश एवं शिक्षा के शब्दों को रेगिस्तान के धर्म पिताओं के कथन के विभिन्न संग्रहों में संकलित और प्रतिलिखित किए गए हैं। धर्म पिताओं के कथन में 133 धर्म पिताओं और 3 धर्म माताओं सारा, देबोरा और संकलितिका संकलित हैं। यद्यपि वे रेगिस्तान के धर्म पिताओं की तुलना में बहुत कम हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। उनके कथन बतलाते हैं कि उन्होंने किस तरह शिक्षा दी थी और क्या भूमिका अदा की थी। रविवार को विश्व संचार दिवस मनाया जाएगा जो सुनने के विषय पर प्रकाश डालता एवं सूचना के केंद्र में व्यक्ति को रखने पर जोर देता है। संत पापा ने कहा है कि सुनने की क्षमता के बिना अच्छी पत्रकारिता नहीं हो सकती। यह महामारी के समय में और इस समय जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है अधिक स्पष्ट हुआ है। कारितास स्पेस यूक्रेन के महासचिव फादर वायकेस्लाव ग्रेनेवक ने संत पापा से वैटिकन स्थित संत मार्था आवास में मुलाकात के बाद कहा, संत पापा फ्रांसिस न केवल सुनने वाले व्यक्ति हैं बल्कि वे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। पलोटाइन पुरोहित ने बतलाया कि सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसको वे कारितास यूक्रेन में दूसरों के साथ काम करते हुए एवं स्वयं सेवकों के रूप में करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।